हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा। सभी भक्तों से नम्र निवेदन है कि कृपया अपना मोबाइल फोन स्विच ऑफ या साइलेंट मोड पर रखें। इस प्रवचन का सीधा प्रसारण आप ऑडियो के रूप में FM 108 पर सुन सकते हैं। और भक्तों से नम्र निवेदन है कि कृपया थोड़ा आगे आए, जिससे कि लेट कमर में आने वाले भक्तों को जगह मिल सके। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है हमारे आज के रविवार के श्रीमद् भागवतम क्लास में। गोवर्धन पर्वत की महिमा चल रही है। ये श्लोक जो हम इतने हफ्तों से ले रहे हैं, जहां गोपियां गोवर्धन को भगवान श्री कृष्ण का सर्वश्रेष्ठ भक्त मान रही हैं, न केवल वो व्यक्तिगत रूप से ऐसा मानती हैं, बल्कि वो ऐलान कर रही हैं कि हरिदास वर्य वो हैं गोवर्धन। तो भगवान ने गोवर्धन पर्वत को धारण किया। इसके जितने विभिन्न कारण, उसमें से ये दूसरा कारण कि गोवर्धन पर्वत की ही महिमा, उसका बखान करने हेतु भगवान ने ऐसी कृपा गोवर्धन पर्वत को दी और गोवर्धन पर्वत के द्वारा हम सबको दी। तो हम लौल्यम, ये जो गुण हैं, उनके महिमा में से महिमामृत यदि हम लें गोवर्धन का, तो उस महिमामृत में ये लौल्यम, जो कि हम साधकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसे सीखने का प्रयास कर रहे हैं। और हमने ये 6C फॉर्मूला इसका प्रारंभ किया। चॉइस, चैलेंजेस, कमिटमेंट, कैरेक्टर, क्लैरिटी एंड कॉन्ट्रीब्यूशन। When it comes to enthusiasm, it is methodical. It is not just something arbitrary, random. हमारे आचार्य हरेक भक्ति का जो गुण है उसका विश्लेषण कर बताए हैं, अनर्थ निवृत्ति का विश्लेषण कर बताए हैं, अर्थ प्रवृत्ति का विश्लेषण कर बताए हैं कि कैसे श्रद्धा से प्रेम तक हम पहुंच सकते हैं। हर एक वस्तु का बहुत ही बारीकी से निरूपण किया गया। इसलिए जब हम अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में भगवान श्री कृष्ण के भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं, तो हमें ऐसे आचार्यों के पदचिन्हों पर चलते हुए हमारी भक्ति को बहुत ही बारीकी से परखना है। हमें माइक्रोस्कोप लेकर हमारी भक्ति को परखते रहना चाहिए। जैसे कि हमने स्कूल में माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल किया होगा, तो ऐसे ही अगर आप देखो, जैसे वो अमीबा कर एक कीड़ा देखा करते थे हम स्कूल में, यूनिसेलुलर, तो उसको ऐसे ही देखो कुछ दिखेगा नहीं। उसी को आप माइक्रोस्कोप के अंडर देखो तो बहुत क्लियरली सब कुछ दिखता है। तो कृष्ण के बारे में पहले भी हम जानते थे थोड़ा बहुत, हम में से कई भगवान कृष्ण की भक्ति भी किए होंगे, परंतु श्रील प्रभुपाद के इस आंदोलन में आने के पश्चात श्रील प्रभुपाद ने हमें वो माइक्रोस्कोप थमाया। अब उस माइक्रोस्कोप के सहारे जब हम अपने स्वयं को देखते हैं, अपने स्वयं के अंदर कि जो थोड़ी बहुत कृष्ण भक्ति है या अध्यात्म है उसको जब देखते हैं तो समझ में आता है कि क्या कुछ करना बाकी है। तो इसलिए हम इतने डिटेल में जा रहे हैं, क्योंकि ये शैली है हमारे आचार्यों की कि वो हर चीज बहुत बारीकी से हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। तो हमने ये जो छह पहलू हैं उत्साह के, इसकी जोड़ी बनाई है, जुगलबंदी है, चॉइस वर्सेस चैलेंजेस, इसकी हमने चर्चा कर ली काफी विस्तार से। जब हम भगवान श्री कृष्ण का चयन करते हैं तो उस चयन के साथ, उस चॉइस के साथ चुनौतियां भगवान हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। When we choose Krishna, we should be ready for challenges for Krishna. Commitment, अर्थात वचनबद्धता, जब हम उसे स्वीकार करते हैं तो क्या परखा जाएगा, हमारा चरित्र परखा जाएगा। कमिटमेंट इज टेस्टेड बाय कैरेक्टर। और अंततः क्लैरिटी, जब भक्ति में हम बहुत सफाई से देख पाएंगे अपने आप को, जिसे आत्म साक्षात्कार कहते हैं, तब जाकर हम कुछ योगदान कर पाएंगे। जब हमारे अंदर कुछ सब्सटेंस पैदा होगा तब जाकर योगदान होगा। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने कहा, कर परोपकार, कि परोपकार कब होगा, पहले जन्म सार्थक कर, स्वयं को जन्म सार्थक करने के पश्चात। तो हम इस मुद्दे पर हैं, कमिटमेंट हमने एक्सेप्टेंस या स्वीकृति इसके संदर्भ में समझने की कोशिश की। कमिटमेंट एंड कैरेक्टर, इन बिटवीन इज एक्सेप्टेंस, स्वीकृति। तो इसी मुद्दे को हम आगे समझने का कोशिश करेंगे कि अलग अलग स्तर हैं। सबसे पहला स्तर है कि हम भक्ति में जब आते हैं या इस भौतिक संसार में, हमें चाहे हम उसका चयन करें, आइदर वी चूज और इट इज फोर्स्ड ऑन अस, क्या है, टॉलरेंस, सहनशीलता। अब जो भगवान ने भगवद गीता में अर्जुन को कह दिया कि अर्जुन तुम मुझसे संबंधित होगे, मैं तुम्हारा सारथी जरूर हूं और तुम्हें विश्वरूप भी दिखा दूंगा और सब कुछ बता दूंगा मेरी भगवत्ता के विषय में, परंतु युद्ध तो तुम्हें लड़ना है। तो अर्जुन पूछे कि भाई युद्ध मुझे लड़ना है, वो तो मुझे पता है कि युद्ध कैसे लड़ा जाता है, कैसे किसी प्रतिद्वंदी का वध किया जाए, ये मुझे पता है, परंतु वो कौन है प्रतिद्वंदी वो देखिए। तो मेरे अंदर भी एक हृदय है जिसके अंदर भावनाएं हैं। भावनाएं किसके प्रति होती है, जिसके प्रति प्रेम होता है, उसका क्या। तो भगवान ने क्या कहा, भगवान ने अर्जुन को कोई हमदर्दी नहीं जताई, भगवान ने अर्जुन को कहा सहन करो, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमापायिनो नित्यास्ताम स्थितिक्षस्व भारत। बहुत स्ट्रॉन्ग ये वर्स है, मानो कि भगवान पत्थर दिल होकर अर्जुन को बोल रहे हैं, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, तुम्हारे अंदर का जो प्रेम है इनके प्रति, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, सहन करो। तो श्रील प्रभुपाद एक प्रवचन में कहे, टॉलरेंस इज समथिंग विच इफ वी चूज विल बी हैप्पी, व्हेन इट इज फोर्स्ड अपॉन अस विल बी फ्रस्ट्रेटेड। तो इसका लॉजिक क्या है, बिफोर इट इज फोर्स्ड अपॉन अस बेटर वी चूज। है कि नहीं, एंड टेक द क्रेडिट, इफ वी चूज देन वी टेक द क्रेडिट, इफ इट इज फोर्स्ड अपॉन अस वी आर विक्टिम्स। दैट इज द साइंस ऑफ टॉलरेंस। तो ये फर्स्ट लेवल है टॉलरेंस। इसके पश्चात श्रीमद् भागवत में ये श्लोक ब्रह्मा जी द्वारा कहा गया, तत्तेनुकंपां सुसमीक्षमाणो भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकम् ऋद्वाग वपुर्वीर विदधन नमस्ते जीवे तयो मुक्ति पदे सदाह्य भाग। यहां ब्रह्मा जी विपत्तियों का सामना किस प्रकार से कर रहे हैं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मेरे जीवन में यदि कठिनाइयां परेशानियां आती हैं तो मैं स्वीकृति देता हूं, मैं एक्सेप्ट करता हूं कि मेरे पिछले कर्मों के वजह से ये मुझे सब कुछ प्राप्त हो रहा है। जैसे हाल ही में लंदन में मुझे एक शख्स ये प्रश्न बार बार पूछ रहे थे, कुछ तो वहां के कम्युनिटी में उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ होगा, तो डिटेल्स नहीं बता रहे थे, परंतु ये प्रश्न पूछ रहे थे कि जब कोई ऐसा बोल देता है, कोई वैसा बोल देता है, कोई ऐसा व्यवहार करता है, तो कैसे उसे हम देखें, चाहे लंदन हो, चाहे भारत हो, चाहे नासिक हो। हाँ, आ ब्रह्मा भुना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना, भगवान ने बोल दिया है ऑलरेडी 5000 साल पहले कि ब्रह्मलोक से लेके, तो सब बीच में आ गए ना, लंदन भी आ गया, उसमें नासिक भी आ गया, सब जगह ये समस्याएं एक जैसी हैं। तो मैंने एसेंस में मैं बता रहा हूं आपको कि उत्तर में कहा, व्हेन समबडी स्पीक्स हार्शली टू यू दैट इज देयर कर्मा इनकरिंग, दे आर इनकरिंग कर्मा, योर रिस्पॉन्स इज योर कर्मा, देयर एक्शन इज देयर कर्मा, योर रिस्पॉन्स इज योर कर्मा, सो यू टेक केयर ऑफ योर कर्मा। अब यहां पर ब्रह्मा जी वही बात बोल रहे हैं कि मैं उसे स्वीकृति दूंगा, जिस प्रकार से यदि कोई व्यक्ति जो गुनहगार है, जो व्यक्ति गुनहगार है, वो व्यक्ति समझ ले और सिद्ध हो जाए कि वो गुनहगार है, तो अपने गुनाह को स्वीकार उसको करना ही पड़ेगा और कोई चारा नहीं है। जैसे कोई कोर्ट में अब तक सिद्ध नहीं हुआ है उसका गुनाह, परंतु जब उसका गुनाह सिद्ध हो जाता है तो सबको पता चल जाता है कि अब इसको कैद हो गई, आजीवन कारावास जो भी कुछ हो गया, तो अब वो जब सिद्ध हो चुका है कि ये गुनहगार है तो वो उसको कैसे स्वीकार करता है। वैसे ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एक्सेप्टेंस। और इसके ऊपर का जो सबसे ऊंचा स्तर है वो है ट्रांसेंडेंस, टॉलरेंस, एक्सेप्टेंस एंड ट्रांसेंडेंस। और यहां पर उदाहरण है कुंती महारानी का, जहां अपनी प्रार्थनाओं में कुंती महारानी भगवान श्री कृष्ण से याचना कर रही हैं कि मुझे विपत्तियां दीजिए, विपदु संत तस्सश्व तत्र तत्र जगद्गुरु, कि जब भी विपत्तियां मेरे जीवन में आई हैं आपका दर्शन हुआ है। और आपका दर्शन अर्थात पुनः जन्म मृत्यु का दर्शन नहीं करना। अब इसमें यह समझना चाहिए कि कुंती महारानी को कोई विपत्तियों से शौक नहीं है। शी इज नॉट मैड आफ्टर कैलामिटीज। उसका रिजल्ट क्या है? उसका रिजल्ट भगवान का दर्शन। तो उनको सरोकार किससे? भगवान के सानिध्य से। वो मेन प्रिंसिपल समझना चाहिए। उसको बोलते हैं ट्रांसेंडेंस। तो आज हम कुछ उदाहरण लेंगे इस मुद्दे पर, कमिटमेंट वर्सेस कैरेक्टर। तो इसमें एक एक उदाहरण जिसकी हम चर्चा करेंगे आज प्रारंभ में, जैसे कि जटायु, विभीषण, हनुमान जी, रामायण से भरत हैं, पांडव, हरिदास ठाकुर और अंत में श्रीमती राधा रानी। तो इन उदाहरणों में हम इस प्रकार से समझने की कोशिश करेंगे कि इनके सामने कौन से कारण थे अपने कमिटमेंट को छोड़ने के। कमिटमेंट को छोड़ने के कारण क्या थे इनके सामने, और कैसे हम उन कारणों से अपनी साधना भक्ति में जूझते हुए, कई बार लड़खड़ाते हुए हम यहां तक निर्णय पर आ जाते हैं कि मुझे भक्ति छोड़नी है। कभी कभी ये जो हमारा भौतिक जीवन, ये भौतिक शरीर, ये भौतिक संसार और अध्यात्म से जुड़ी हुई सब बातें, एक पलड़े पे ये सब, दूसरे पलड़े पे ये, उसको बैलेंस करते 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 कई साधक वो इस हद तक पहुंच जाते हैं कि बस अब वो प्रेशर कुकर से स्टीम भी नहीं निकल रही है, सीटी नहीं बज रही है, स्टीम अंदर बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो होता क्या है, फट जाता है वो कुकर। परंतु हमने कुछ ऐसे उदाहरण चुने हैं हमारे शास्त्रों से, ये जो लिस्ट आप देखोगे, इनके सामने ऐसे ऐसे बहाने थे, हम अगर उनको बहाने कहें, ऐसे ऐसे कारण थे कि भगवान की भक्ति छोड़ने का या फिर जो समर्पण है उसको छोड़ देने का। परंतु उन्होंने अपने चरित्र को सिद्ध किया, उन कारणों को पार करते हुए उन्होंने अपने चरित्र को सिद्ध किया। दैट इज कॉल्ड कमिटमेंट, दैट इज कॉल्ड कैरेक्टर। तो सबसे पहला उदाहरण टू बिगिन विथ फ्रॉम होम ग्राउंड्स, जटायु। अब जटायु के सामने असफलता, जटायु वो जानते थे कि वो रावण पर विजयी नहीं होंगे। जटायु न्यू ही इज गोइंग टू बी डिफीटेड बाय रावण। तो अब देखिए उनका समर्पण देखिए। अक्सर अब यदि हम हमारी तुलना करें, यदि हम जानते हैं कि किसी सेवा में हम असफल होने वाले हैं या हमसे ये सेवा नहीं होने वाली है, तो सेवा शुरू होने से पहले ही हम उसका तिलांजलि दे देते हैं कि भाई किसी और को दे दो, मुझसे तो नहीं होने वाली, मैं जानता हूं नहीं। क्या सीख रहे हम जटायु से? कि जानते बूझते हुए कि वो असफल होंगे और किस प्रकार से उनके ऊपर, ऐसा नहीं कि ऐसी असफलता कि छोटी मोटी लेवल की असफलता हो, यहां पर प्राण उनके चले गए, ही लॉस्ट हिज लाइफ, प्राण भी गए और सफल भी नहीं हुए। कई बार ये तसल्ली होती है ना कि अरे मरते मरते यदि, जैसे कि कोई सैनिक होता है वो अपने देश के लिए लड़ रहा है और मरते मरते उसे पता है कि मरने के पश्चात मुझे परमवीर चक्र मिलेगा, है ना। बहुत से ऐसे योद्धा हुए हैं हमारे आर्मी के, आर्म फोर्सेस के, जो मरने के पश्चात उनको परमवीर चक्र पोस्थमसली मिला हुआ है। तो यदि हम ये जानते हैं कि बस हमारे प्राण छूटने वाले हैं, परंतु उसके पश्चात भक्त समुदाय में मेरा जो गुणगान होगा इस बलिदान के वजह से, यहां पर जटायु वो इस अपेक्षा में भी नहीं थे कि रामचंद्र जी उनको खोज लेंगे। ही डिडंट इवन हैव दैट एक्सपेक्टेशन। अकेले थे वो, कोई नहीं था वहां पर देखने के लिए कि जटायु वो क्या समर्पण अर्पित कर रहे हैं रामचंद्र जी के प्रति। दिस इज कॉल्ड कैरेक्टर। नोबडी वॉज देयर, फॉरगेट अबाउट हेल्पिंग जटायु, नोबडी वॉज देयर टू रिकॉग्नाइज हिज सैक्रिफाइस। तो हम यही सीख रहे हैं कि भक्ति में ये एक जो कारण है हमारे समर्पण में कमतरता आने का, कौन सा कारण? फेलियर। हम चैंटिंग लीजिए, कितनी बार हम फेल हुए हैं, अक्सर रोज हो रहे हैं, हर एक माला में फेल हो रहे हैं। और कई बार कई डिवोटीज कई सालों बाद, दीक्षा हो चुकी है, वचनबद्ध हैं, परंतु उस माला में रुचि नहीं है, वो टेस्ट नहीं, या फिर वो जो दावा दिया गया है कि ये हरिनाम संकीर्तन इतने अनर्थ निवृत्ति करा देगा, वो सब कुछ कुछ नहीं दिख रहा। तो हताश होकर मैं ऐसे ऐसे दीक्षित भक्तों को जानता हूं जिन्होंने माला करना बंद कर दिया है हताश होकर, और कन्फेस करते हैं प्रभु कुछ रिजल्ट नहीं मिला, 15 साल माला की कुछ रिजल्ट नहीं मिला, इसलिए छोड़ दी माला। तो एक बार एक ऐसे ही मुझे कह रहे थे, बहुत पुराने भक्त बोल रहे थे कि प्रभु जी 15 साल मैंने एकदम कठोरता से ये जप करने का प्रयास किया, परंतु जो अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि ये सब कुछ जो बताया गया है कोई लक्षण कुछ नहीं दिखे, इसलिए मैंने छोड़ दिया है जप करना। तो मैंने पूछा भाई ये तो केवल 15 साल हुआ है जप करते हुए, इसके पहले कितने जन्मों तक इंद्रिय भोग किया होगा, उसे तो नहीं छोड़ा। इंद्रिय भोग बद्ध जीव क्यों बार बार किए जाता है, किए जाता है, किए जाता है, कि वो एक ऐसा दिन आएगा, वो एक ऐसा इंद्रिय भोग आएगा जब मैं पूर्ण रूप से संतुष्टि प्राप्त करूंगा उसमें। बार 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 इंद्रिय भोग बार बार करता है वो बद्ध जीव, और बार बार ठोकर खाता है, बार बार सर के बल गिरता है, फिर भी आशा नहीं छोड़ता। चाहे कोई भी योनि हो, उसमें वो आहार निद्रा भय मैथुन उससे हताश नहीं होता है। तो मैंने कहा उससे तो तुम हताश नहीं हुए, 15 लाख जन्मों का किया हुआ इंद्रिय भोग वो अभी भी ताजा है, और 15 साल का जप वो बासी हो गया। हाउ कम यू हैव सो मच होप्स इन सेंस ग्रेटिफिकेशन? व्हाट हैज सेंस ग्रेटिफिकेशन गिवन टू यू? माया देवी भी बहुत दावे देती है, माया देवी भी बहुत प्रॉमिसेस देती है, एंड नेवर डिलीवर द गुड्स शी प्रॉमिसेस, जैसे बोलते हैं ना, शी नेवर डिलीवर, इनफैक्ट द ऑपोजिट, फिर भी बार बार बार। तो यहां पर फेलियर, असफलता। अब अगला उदाहरण है विभीषण का। तो विभीषण के उदाहरण में यदि हम देखें, बैड एसोसिएशन। अब ये कारण होता है हमारे जीवन में भी, जब हम भगवान के समर्पण में कमतरता दिखाते हैं कि भाई मेरा संग ऐसा है, ऐसे 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 ऑफिस में मुझे जाना पड़ता है, ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना पड़ता है, जॉब बदल नहीं सकता, सोसाइटी ऐसी है, सोसाइटी बदल नहीं सकता, क्या करूं? तो फिर भक्तों को भी समझना चाहिए, भगवान को भी समझना चाहिए। तो कोई कह सकता है कि मेरा बुरा संग इतना बुरा है जितना कि रावण और रावण की लंका। रावण के विषय में बताया गया है कि रावण वो किस हद तक एक पाप वृत्ति का व्यक्ति था। जब पहली दफा वाली के साथ रावण ने युद्ध किया, और रावण हर समय वो दो चीजें किया करता था, दूसरों की औरतों पर डोरे डालता था, परस्त्रीगमन, और दूसरा जो भी उससे थोड़ा शक्तिशाली दिखता उसके ऊपर प्रहार करके उस पर विजय प्राप्त करना। ये दो मिशन स्टेटमेंट रावण के किया करता था वो। तो वाली को जब उसने देखा कि वाली जो है सुग्रीव का भाई, ये वाली इतना शक्तिशाली हो रहा है, तो वाली के साथ उसने युद्ध किया और हार गया, वाली के साथ हार गया। तो वाली के साथ जब हार गया तो फिर दोस्ती कर ली वाली के साथ। वो बेवकूफ नहीं था रावण, वाली के साथ दोस्ती कर समझौता कर लिया कि भाई ये काम आएगा मेरे को आगे चलकर, इसके साथ मित्रता कर लेनी चाहिए। परंतु उसने मित्रता वाली के साथ क्यों की, और मित्रता के क्या नियम बांधे उसने, आप सुनोगे तो आश्चर्यचकित रह जाओगे। ये हम कलयुग की बात नहीं कर रहे हैं, कलयुग में भी ये बात आप सुनोगे तो अजीब सा लगेगा आपको। रावण वाली के साथ बैठता है, और कहां बैठता है, अग्नि जलाकर, जैसे कि यज्ञ कुंड होता है, यज्ञ कुंड जलाकर अग्नि को साक्षी रखकर रावण और वाली वो एक पैक्ट बनाते हैं। क्या पैक्ट बनाते हैं? कि रावण कहता है वाली से कि मेरी पत्नी तुम्हारी, तुम्हारी पत्नी मेरी, जिसको आजकल की भाषा में बोलते हैं वाइफ स्वैपिंग। ये प्रस्ताव रावण ने वाली को रखा अग्नि को साक्षी बनाकर, और वाली ने स्वीकार भी किया। कई बार लोग बोलते हैं ना कि वाली को छिप कर क्यों मारा प्रभु राम ने, हाँ वाली के साथ नाइंसाफी हुई। तो ये देखो सबसे पहले वाली किस प्रकार का चरित्र वाला व्यक्ति था। He accepted this proposal put forth by रावण। तो सोचिए ऐसा रावण, ये राजा है, ये लंकेश है, तो इसकी प्रजा क्या होगी। वहां पर 2400 घंटे सारे नियम तोड़े जाते थे सब जगह पूरे लंका में, और ऐसे लंका में विभीषण रहते थे। अब वहां पर कोई इस्कॉन का सेंटर नहीं था कि वो हर संडे जाके कम से कम अपना एक सत्संग करके आ जाएंगे, नहीं। सो इफ विभीषण वॉन्टेड टू गिव अप हिज कमिटमेंट टू लॉर्ड राम, ही हैड द मोस्ट पावरफुल रीजन, एंड दैट इज बैड एसोसिएशन। एक बार हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बॉम्बे में एक राम कथा चल रही थी, किसी महात्मा वो राम कथा दे रहे थे, तो वहां पर हमको परमिशन मिला था कि हम बुक टेबल लगा सकते हैं। तो मैंने बुक टेबल एक भक्त के साथ वहां पे लगाई, तो उनके स्पीकर्स बाहर तक थे, पंडाल के बाहर तक, तो वो राम कथा सुनाई दे रही थी। हम लोग टेबल पे खड़े थे, राम कथा सुनाई दे रही। तो अभी भी मुझे याद है उन्होंने विभीषण का प्रसंग, विभीषण की व्यथा सुना रहे थे वो रामकथा में। तो उन्होंने कहा विभीषण लंका में रावण, जो कि वो भाई विभीषण का एक प्रकार का राक्षस, राक्षसी प्रवृत्ति वाला, और उसके सारे अनुचर सभी राक्षसी प्रवृत्ति वाले, तो विभीषण की दशा क्या थी लंका में, उदाहरण से समझाने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हमारी जिह्वा होती है, हमारी जिह्वा होती है कितनी मुलायम होती है, परंतु घिरी हुई किससे होती है, नोकीले दांतों से। तो विभीषण वो मुलायम जिह्वा की तरह, और रावण के अनुचर ये नोकीले दांत की तरह। अभी भी वो उदाहरण याद है मेरे को। तो कह रहे थे कैसे जिह्वा को खाते समय, बोलते समय अपने आप को उन नोकीले दांतों से बचाए रखना पड़ता है। कभी कभी गलती से जब दांत या जिह्वा दो दांतों के बीच में आती है तो हमको अनुभव है क्या होता है। तो विभीषण जी की स्थिति वही थी लंका में, नोकीले राक्षसों के बीच जैसे जिह्वा है। तो यदि हम कभी कभी बुरा संग कर लें, परिस्थितिवश बुरा संग हो जाए परिस्थितिवश, और उसके वजह से यदि हमारा समर्पण कम हो रहा है, तो विभीषण जी को याद करो। ये सारे एक्सट्रीम एग्जाम्पल्स हैं। फेलियर जटायु को याद करो। बैड एसोसिएशन में अगर हम हैं, वो अगर चुनौती है, तो विभीषण को याद करो। इतनी बदतर स्थिति नहीं हो सकती किसी की भी। नेक्स्ट उदाहरण हनुमान जी का। हनुमान जी को उनके मिशन में अलग अलग कंफर्ट्स ऑफर हुए। वो हम जानते हैं कि जैसे ही उन्होंने चुना कि अब वो कूद कर जाएंगे रामचंद्र जी का संदेश लेकर लंका, तो जब कूदे समंदर को पार कर रहे थे तो वो सिंहिका, सुरसा, मैनाक और ये सब अलग अलग ये जो प्रलोभन आए और ये हनुमान जी को ये कह रहे थे कि आप, हालांकि ये सब देवता द्वारा भेजे गए, वो टेस्ट कर रहे थे हनुमान जी को और हनुमान जी इन सब के टेस्ट में उत्तीर्ण हुए। किसी का भी तिरस्कार नहीं किया हनुमान जी ने, परंतु हनुमान जी ने उनके द्वारा दिए गए प्रलोभन को स्वीकार नहीं किया। अब हमारी साधना भक्ति में ये कारण बनता है, शुरुआत में साधना भक्ति में हाँ हम एकदम कसकर नियमों का पालन करते हैं, फिर धीरे धीरे जैसे हम थोड़े एडवांस हो जाते हैं इंस्टीट्यूशनली, स्पिरिचुअली वो बहुत दूर की बात है, इंस्टीट्यूशनली जब एडवांस हो जाते हैं तो हमको सुविधाएं मिलती हैं। अब लाइन में नहीं खड़ा होना पड़ता, प्रभु जी आप लाइन में खड़े हो, आपके लिए हम प्लेट बना के लाएंगे। फिर हमको जो भी आगे की सीट मिलती है आरती पहले दिया कर देते हैं, महाप्रसाद, महागार्लैंड, प्रभु से महाप्रभु हो गए, सब कुछ महा महा हो रहा है, शनि की भी महादशा चल रही है, वो भी महा है। मटेरियल कंफर्ट्स, तो जब बहुत ज्यादा कंफर्टिंग डिवोशनल सर्विस हमारी शुरू हो जाती है, वो एक फेज आता है, तो धीरे धीरे समर्पण के ऊपर की जो पकड़ है वो ढीली होती जाती है, देन वी बिकम लैक्स इन आर कमिटमेंट। सो दिस इज अनदर ट्रैप ऑफ माया, व्हेन शी प्रेजेंट्स डिवोशनल कंफर्ट्स, वो भी जानती है कि ये दीक्षित है, इसने वाउज लिए हैं, चार नियम का पालन ये करने वाला, ये बेवकूफ नहीं है, इसलिए इसको बाहर के मटेरियल कंफर्ट्स नहीं, इसको स्पिरिचुअल लग्जरीज, स्पिरिचुअल कंफर्ट्स देकर इसको धीरे धीरे अपना बनाना है। सो दिस इज वीलन, और वो भी ये लोग सब क्या आश्वासन दे रहे थे हनुमान जी को कि हम आपके रामचंद्र जी के मिशन में सहायक बनकर आए हैं। उसी प्रकार से माया देवी ये सारे लग्जरीज, फैसिलिटीज, रिसोर्सेस, कंफर्ट्स लाकर प्रस्तुत करती है, दिस इज अगेन इन द सर्विस ऑफ श्रील प्रभुपाद एंड द मिशन, नॉट फॉर यू, एंड समटाइम्स वी गेट कैरिड अवे। सो वी हैव टू रिमेंबर हनुमान जी, उन्होंने कहीं पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, जब तक कि उन्होंने जो उनको मिशन दिया गया था वो पूरा मिशन जब तक उन्होंने पूरा नहीं किया, उन्होंने चैन की सांस नहीं ली। सो दैट शुड बी कमिटमेंट विच वी लर्न फ्रॉम हनुमान जी। नेक्स्ट उदाहरण है भरत। अब ये बहुत ही एक कठिन स्थिति है जहां भरत को हर प्रकार का तिरस्कार, अपमान, बदनामी, जो भी आप कहो, वो सब कुछ भरत को सहना पड़ा। क्यों? एक ही कारण था, मां थी कैकेयी, बस उस एक कनेक्शन के वजह से भरत को 14 साल वो तिरस्कृत जीवन जीना पड़ा। न तो वो उसको डिसोन कर सकते थे, न वो ये कह सकते थे कि नहीं मैं अब मां बदल रहा हूं, नहीं, न वो कैकेयी को मार सकते थे क्योंकि वो न केवल उनकी मां थी बल्कि स्त्री, तो वो मार भी नहीं सकते थे, उसको डिसोन भी नहीं कर सकते थे। आप एक मिनट के लिए कल्पना कीजिए कि यदि हम भरत की स्थिति में होते कि जिस समुदाय में आपको हर प्रकार का सम्मान मिला हुआ है, वो पूरा समुदाय, वो पूरी प्रजा, वो पूरा राज्य आपको 14 साल इस नजरों से देख रहा है, तेरे वजह से हमारे प्रभु श्री राम बहिष्कृत हुए। इमेजिन टू लिव विद दैट, व्हाट काइंड ऑफ कमिटमेंट इज दिस? सुपर एक्सीलेंट कमिटमेंट शोड बाय भरत। और क्योंकि रामचंद्र जी ने, अच्छा ठीक है, भरत जी ये सोच लेते कि रामचंद्र जी नहीं आ रहे हैं, यहां पर अयोध्यावासी वो मुझे दोषी मान रहे हैं, तो ठीक है मैं दोनों को छोड़कर कहीं ऐसी जगह पर चले जाता हूं जहां पर कोई मुझे जानता ना हो, है ना। बहुत टिपिकल रिस्पॉन्स क्या होता है, वी आइसोलेट आवरसेल्व्स, वी गो टू सम प्लेस वेयर नोबडी नोज अस, कि ठीक है भाई अब उससे दूर रहेंगे तो फिर कोई बदनामी नहीं कुछ नहीं। यहां पर भरत को जब रामचंद्र जी ने कह दिया कि मेरे बिहाफ पर जाकर अयोध्या का मैनेजमेंट संभालना है, तो ये कमिटमेंट देखो, रामचंद्र जी से एक उत्तरदायित्व मिल गया, जिम्मेदारी मिल गई, परंतु उसे बोझा नहीं समझा उन्होंने। और रामचंद्र जी वो केवल ऐसा नहीं कि वो भरत से कितना प्रेम करते थे, जैसे ये एक बहुत ही सुंदर राम और भरत के संदर्भ में कितने संवेदनशील रामचंद्र जी थे भरत के प्रति, ये प्रसंग दर्शाता है। तो जब रामचंद्र जी निकले वन की ओर, तो नंगे पैर रामचंद्र जी चल रहे हैं, और चलते चलते सबसे पहला कांटा जब चुभा रामचंद्र जी के पैरों में, तो रामचंद्र जी ने धरती माता को आह्वान किया और प्रार्थना की धरती माता से कहा, तुरंत धरती माता प्रकट हो गई कि रामचंद्र जी पुकार रहे हैं, वो आह्वान दिए, और प्रार्थना करते हुए हाथ जोड़ते हुए धरती माता से रामचंद्र जी कहते हैं कि मैं यहां से जो अब गुजर रहा हूं, तो मेरे पीछे और जो भी रास्ते पर मैं चलूंगा, आप कृपा कर ये सारे कांटों को दूर कर दें और एकदम मखमली मुलायम सी रेती आप बिछा दें। तो धरती माता वो थोड़ी जिज्ञासु हुई कि रामचंद्र जी ये स्वयं के लिए तो नहीं मांग रहे, तो किसके लिए मांग रहे हैं? तो रामचंद्र जी ने कहा, मेरे पीछे मुझे पूछते हुए भरत आने वाला है, तो भरत के पैरों में ये कांटे न चुभें, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं कि आप ये कांटे निकालकर आपकी इस धरती को एकदम मुलायम रेती की तरह बना दें। तो और जिज्ञासा बढ़ी धरती माता की, उन्होंने रामचंद्र से पूछा कि अरे भाई भरत वो क्षत्रिय हैं, आप जो कि ज्यादा उनसे प्रगत हो और आप का शरीर जो है वो ज्यादा नाजुक है, परंतु आप कोई कंप्लेन नहीं, कोई शिकायत नहीं आप स्वयं अपने लिए किए, तो क्यों भरत के लिए? क्या भरत सहन नहीं कर पाएंगे? हालांकि वो केवल जो आज्ञा मिली थी वो करने वाली थी, परंतु वो जानना चाहती थी। तो उन्होंने पूछा, क्या भरत सहन नहीं कर पाएंगे मेरे कांटों को? रामचंद्र जी ने कहा कि नहीं, मैं शारीरिक सहनशीलता की बात नहीं कर रहा यहां पर, भरत तो कितने भी कांटे ले लेगा अपने पैरों में आपके दिए गए, परंतु भरत को तकलीफ कौन सी होने वाली है? जब भरत के पैरों में कांटा चुभेगा तो वो सबसे पहले मेरे बारे में सोचेगा कि मेरे प्रभु श्री राम इसी रास्ते से गए और पता नहीं उनके पैरों में कितने कांटे चुभे होंगे, ये सोचते हुए उसका हृदय विदीर्ण होगा और वो मैं नहीं चाहता। जो उसके हृदय में कांटा चुभेगा उसके बारे में मैं बोल रहा हूं धरती माता। सोचिए, ये घनिष्ठता थी रामचंद्र जी और भरत के बीच। तो सोचिए कि ऐसे आराध्य देव के प्रति समर्पण भरत का होना, चाहे कितना भी तिरस्कार उनको मिला हो पूरे अयोध्या वासियों से, चाहे कितना भी अपमान, कितनी भी बदनामी, उसके बावजूद उन्होंने जो कमिटमेंट समर्पण दिखाया वो प्रभु श्री राम के ऐसे स्नेह के वजह से। और प्रभु श्री राम भी अपना स्नेह दिए क्योंकि उन्होंने ऐसा समर्पण भरत के अंदर देखा। तो ये उदाहरण है भरत का। अब हम यदि हमारी साधना भक्ति में, भक्तों के समुदाय में कोई यदि हमें बोल दे कुछ, कई बार होता है ना कि मैंने दूसरा गुलाब जामुन मांगा, दिया नहीं मुझे। हमारा समर्पण देखिए क्या लेवल का है। मैं लाइन में खड़ा था, मैंने गेस्ट को भी लाया था, उसको भी नहीं दिया, मुझे भी नहीं दिया, कभी नहीं आऊंगा आपके इस्कॉन के मंदिर में, मत आओ भाई। जैसे कि बहुत बड़े एहसान कर रहे हो आके, कभी नहीं आऊंगा, मेरे साथ ऐसा व्यवहार हुआ, मेरे साथ वैसा व्यवहार हुआ। यहां पे यदि भरत इस प्रकार का रिएक्शन देते कि अरे मेरी क्या गलती है, मेरी मां ने सब कुछ किया है, वो जाकर सफाई पेश करते, डिफेंस लॉयर को लाते, नहीं, उन्होंने कभी सफाई पेश नहीं की, उन्होंने कभी दोषी किसी को नहीं ठहराया, परंतु उन्होंने अपना समर्पण, अपना कमिटमेंट वो बनाए रखा। इट्स अ वेरी स्ट्राइकिंग एग्जाम्पल ऑफ डेस्पाइट ऑफ क्रिटिसिज्म एंड इनफेमी, हाउ अ सिंसियर डिवोटी इज कमिटेड टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन बिहाफ ऑफ लॉर्ड राम। दैट इज भरत। पांडवों का उदाहरण। अब यहां पर हमने केवल कलामिटीज नहीं लिखा है, कॉन्स्टेंट कलामिटीज। ये इसलिए जानबूझ के कि कई बार हमारे जीवन में हम चाहें या न चाहें विपत्तियां आती हैं, मानसिक विपत्तियां, शारीरिक विपत्तियां, सामाजिक विपत्तियां, दूसरे भक्त द्वारा दी गई विपत्तियां, और परिवार में जो भक्त हैं उन द्वारा दी गई विपत्तियां, चाहे वो भक्त हैं या नहीं हैं। कई बार परिवार में सभी दीक्षित हैं फिर भी भगवद गीता से पहले का ग्रंथ होता है महाभारत। भीष्म पर्व बहुत बाद में आता है। तो यहां पर पांडवों के जीवन में देखिए, बचपन से लेके अंत तक वो अगर लिस्ट निकालें कि बचपन से लेके कितनी विपत्तियों का, और ऐसा नहीं कि विपत्तियां कैसी थी कि सर्दी जुकाम हो गया जब करते समय, कोई सर्दी जुकाम वाली विपत्तियां नहीं, जान लेवा विपत्तियां। इन सब के बावजूद मैं आपको एक, हम तो बहुत सारी पांडवों की कथाएं सुने हैं, एक ये मैं आपको सुनाना चाहूंगा जिसमें एक सैंपल से आपको पता चलेगा व्हाट वाज द कमिटमेंट ऑफ पांडवस टुवर्ड्स कृष्णा। जब सब कुछ हुआ, अब सभी लोग भगवत धाम जा रहे हैं, अपना उन्होंने पूरा ऐसा कठिन जीवन जिया पांडवों ने, सब प्रकार की विपत्तियों का सामना करते हुए फाइनली जब वो भगवत धाम लौट रहे थे, तो युधिष्ठिर महाराज जिस पथ से भगवत धाम जा रहे हैं, सोचिए युधिष्ठिर महाराज कौन है, धर्मराज, वो युधिष्ठिर जो कि धर्म के राजा, धर्म के प्रतीक, वो युधिष्ठिर महाराज किस अपेक्षा में भगवत धाम पर निकले होंगे कि भाई मैंने अपने जीवन में विपत्तियां आई उसके बावजूद मैंने अपना धर्म नहीं छोड़ा। युधिष्ठिर महाराज को रास्ते में नरक का दर्शन करना पड़ा। किसका दर्शन करना पड़ा? हेल, नरक का दर्शन करना पड़ा। और ये अरेंज किया था देवराज इंद्र और यमराज जी ने। यमराज और देवराज इंद्र ने अरेंज किया कि युधिष्ठिर जो हैं उनको भगवत धाम जो जाने का रास्ता है डिटूर लेकर उनको थोड़ा यमपुरी। अब देखो ये एक बहुत बड़ा कलंक है कि भगवत धाम के रास्ते पर अक्सर वो अर्ची पथ और ये अलग अलग बताया गया है हमारे शास्त्रों में कि सूर्य का पथ लेते हैं और अलग अलग जो ब्रह्मलोक हैं, अच्छे अच्छे जो लोक हैं वहां से गुजरकर वो भक्त जाता है। यहां पर ये उनके क्रेडेंशियल्स में अगर आ गया कि युधिष्ठिर महाराज जाते जाते उनको नरक भी जाना पड़ा, परमानेंटली आ गया ना महाभारत के अंदर, नरक भी जाना पड़ा। अच्छा क्यों? ये तो पहली बात कि नरक का दर्शन करना पड़ा उनको, धर्मराज को, और वो भी क्यों? तो जब वो पूछे कि भाई इस रास्ते से और यमपुरी का दर्शन मुझे क्यों दिया जा रहा है, तो यमराज जी और इंद्र कहते हैं क्योंकि आपने महाभारत के युद्ध में झूठ बोला। नरोवा कुंजरोवा, क्योंकि आपने झूठ बोला। अब सोचिए युधिष्ठिर महाराज जो कि वो नहीं बोलना चाहते थे और किसने बुलवाया वो झूठ, उनके आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण ने वो झूठ बुलवाया उनसे, उनको नहीं बोलना था वो झूठ। परंतु युधिष्ठिर महाराज का चरित्र देखिए, युधिष्ठिर महाराज को जब ये बताया गया कि इस कारण के वजह से आपको नरक का दर्शन करना पड़ रहा है, तो युधिष्ठिर महाराज ने उसको स्वीकार किया और उसको स्वीकार करने के पश्चात तुरंत अगला दर्शन वो करते हैं, कृष्ण अर्जुन के साथ बैठे हुए हैं, परंतु उन्होंने एक शब्द कंप्लेन या शिकायत का नहीं कि भाई आपने मेरे को झूठ बोलने के लिए बुलवाया और आप मेरे को जब ये सब करवा रहे हो नरक का दर्शन, वहां पे मेरे को बचाना चाहिए था आपको, हाँ कम से कम डिफेंड करना चाहिए था ना कि इसकी गलती नहीं है, मैंने करवाया था ये सब, ये तो सच बोलने वाला था, ये कभी झूठ नहीं बोला है। यू नेवर, युधिष्ठिर महाराज ने कभी भगवान श्री कृष्ण से एक दफा भी शिकायत करी, वाई यू चीटेड मी लाइक दैट, वाई यू डिंट कम टू डिफेंड मी। भक्तों के समुदाय में क्या होता है, जब कोई डिवोटी किसी को कुछ करने बोलता है और वो जब करने जाए और विपरीत उसका परिस्थिति हो जाए और ये पीछे हट जाए, मैंने नहीं बोला, तुम संभालो अभी, तुम यू फेस द म्यूजिक, तो कैसे वो बिदक जाता है वो डिवोटी, दगा दिया। सो व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम युधिष्ठिर? What kind of character Yudhishthir Maharaj had? Never once complained against Krishna. इसलिए ये एक बहुत ही, श्रील प्रभुपाद के कई पास्ट टाइम्स में से ये एक पास्ट टाइम, बहुत ही पावरफुल पास्ट टाइम मुझे लगता है। श्रील प्रभुपाद रात के 12:30 बजे सभी डिवोटी सोए हुए हैं, प्रभुपाद ने उठाया, उनके जो सीनियर सन्यासीज उस मंदिर में रह रहे थे, प्रभुपाद ने उन सीनियर सन्यासीज को उठाकर अपने कमरे में बुलाया 12:30 बजे। सभी लोग डर गए, रात के 12:30 बजे प्रभुपाद क्यों बुला रहे हैं? सब लोग मुंह धोकर वो गए प्रभुपाद के कमरे में। प्रभुपाद एकदम सीरियस बैठे हुए हैं और डर गए लोग प्रभुपाद को ऐसा सीरियस देखकर। यस यस प्रभुपाद, व्हाट इज इट, व्हाट हैपेंड? प्रभुपाद ने वो दीवार पर टंगी एक तस्वीर दिखाई कृष्ण और अर्जुन की। प्रभुपाद ने कहा, जस्ट सी, जस्ट लुक एट द कंडीशन ऑफ अर्जुन। सब लोग देख रहे हो तस्वीर की ओर, सब इतनी बार देखे हुए थे, लेकिन वो सोच रहे हैं रात के 12:30 बजे ये तस्वीर क्यों दिखा रहे हैं प्रभुपाद। प्रभुपाद ने कहा, जस्ट सी, लुक एट, दिस इज वॉट इट टेक्स टू बिकम अ डिवोटी ऑफ कृष्णा। यू हैव टू किल योर ओन ग्रैंड फादर, you have to kill your own guru, this is what it takes to surrender to Krishna, are you ready? बहुत heavy ये प्रभुपाद का statement था। मुद्दा क्या है, प्रभुपाद ये बता रहे थे कि यदि अर्जुन जो कि अपने पितामह, अपने गुरु जिनसे वो इतना प्रेम करता था, इतना आदर करता था, भगवान श्री कृष्ण ने अपने समर्पण को दर्शाते हुए, अर्जुन का कृष्ण के प्रति समर्पण परखते हुए अर्जुन को कहा कि इनको मारो, इनको खत्म करो। वो श्रील प्रभुपाद कहे, इफ यू आर रेडी टू फॉलो कृष्णा टू दैट एक्सटेंट, द मोस्ट डियरेस्ट ऑफ यू ऑल थिंग्स, कृष्णा विल आस्क यू टू रिलिंक्विश इट, आर यू रेडी टू डू दैट? नाउ यू कैन गो एंड स्लीप। अभी नींद आएगी ये सुनने के बाद नींद आएगी। यदि भगवान श्री कृष्ण के समर्पण की सोच से हमें नींद ना आए, वो है शुरुआत हमारे समर्पण की। जैसे कि कहा जाता है ना कि सपने वो नहीं जो नींद में लिए जाते हैं, सपने वो हैं जो जिसके वजह से नींद ना आए, उसे कहते हैं सपने। तो यदि हम भगवान को अपना आराध्य माने हैं, भगवान श्री कृष्ण को अपना आराध्य माने हैं, सो आर वी रेडी टू डू दैट काइंड ऑफ सैक्रिफाइस? What the Pandavas, Yudhishthir Maharaj, Arjun, इन सबको झेलना। जो द्रौपदी, वो तो एक अलग ही प्रसंग है, कभी हम लेंगे कि द्रौपदी को क्या झेलना पड़ा भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करने के लिए। This is what it takes to pass the test of Krishna in achieving Krishna. मैं हाल ही में निगड़ी में था, वहां पर उन्होंने पुष्पाभिषेक प्रोग्राम के लिए बुलाया था मुझे। निगड़ी का मंदिर आपने देखा होगा, इतना सुंदर, इतना भव्य मंदिर है। करीब 1500 आए थे वो फेस्टिवल के लिए, पुष्पाभिषेक फेस्टिवल के लिए। तो निगड़ी वो मंदिर आप लोग देखे हैं ना, निगड़ी का मंदिर, तो निगड़ी का वो मंदिर, वो पूरा कॉन्ग्रीगेशन, इतना सुंदर मंदिर, आप जानते हैं इसकी शुरुआत कैसे हुई? बहुत इंटरेस्टिंग है, निगड़ी कॉन्ग्रीगेशन की शुरुआत कैसे हुई आप जानना चाहेंगे? वहां पर गोपाल आचार्य प्रभु हैं और उनकी धर्मपत्नी मुखरा माता जी। हाल ही में मुखरा माता जी, उनका देहांत हुआ, तो ये बात है पता नहीं कौन से वर्ष की, वो वर्ष मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है। तो जब ये मुखरा माता जी, ये कोई इस्कॉन से इनका कोई कनेक्शन नहीं था, और बस जैसे कि एक हिंदू परिवार की एक गृहिणी जो कि सारे विधि विधान धार्मिक कार्य वगैरह करती हैं घर पर, तो ये घर पर ऐसे ही कुछ आध्यात्मिक भजन कीर्तन किया करती थी। तो उस समय निगड़ी में हमारे राधेश्याम प्रभु जो कि स्टूडेंट थे, नहीं स्टूडेंट के पश्चात वो नौकरी कर रहे थे राधेश्याम प्रभु, और सुदामा प्रभु, गौरांग प्रभु, ये लोग सब रहते थे, तो ये लोग सब जॉब करते थे उस समय। तो राधेश्याम प्रभु, उन्होंने सुना लेक्चर में, द मोस्ट प्लीजिंग सर्विस टू कृष्णा इज व्हेन वन प्रीचेज अबाउट द गीता टू अदर्स। तो अब वो एक जुनून उनके अंदर था प्रीचिंग का, राधेश्याम प्रभु के अंदर। तो वो ये मुखरा माता जी जहां पर इनका घर था, तो ऐसे ये वो रोड से गुजर रहे थे, इनको कोई पता नहीं कि ये कौन है ये फैमिली, इनको भी पता नहीं कि ये कौन है राधेश्याम प्रभु। तो राधेश्याम प्रभु ने सुना कि कुछ ऐसे कीर्तन की सी आवाज आ रही, तो ये घर में गए, घर में घुस गए, न जान न पहचान, घर में घुस गए और कहे, क्या मैं लेक्चर दे सकता हूं इधर? तो वो लोग सब कीर्तन करते हुए, ये कौन है पैंट शर्ट में लड़का? अब कोई अगर ब्रह्मचारी अगर कोई आए तो कम से कम ठीक है, वो लोग उसका स्वागत करेंगे कि हाँ कोई साधु के वेश में है, तो नहीं, ये पैंट शर्ट के अंदर मैं इधर लेक्चर दे सकता हूं। तो वो मुखरा माता जी ने बोला, लेक्चर क्या लेक्चर? नहीं नहीं, मैं कुछ आप लोगों को गीता के ऊपर सुनाना चाहता हूँ। हाँ बोली, गीता के ऊपर बोली। तो उधर बैठ के उन्होंने, वहां से ये फैमिली कल्टिवेट होना शुरू हुए। दैट इज द बिगिनिंग ऑफ, कोई वहां पे डिवोटीज नहीं थे, कोई ब्रह्मचारीज नहीं थे, कोई आश्रम नहीं था, कुछ नहीं था वहां से। तो वहां पर धीरे धीरे फिर प्रोग्राम शुरू हुआ, ये प्रोग्राम की शुरुआत है। और ये मुखरा माता जी इतना सीरियस धीरे धीरे हो गई वो डिवोशनल सर्विस में। उनके हस्बैंड गोपाल आचार्य प्रभु, अभी भी मैं उनसे मिला इस बार निगड़ी में, उनके तीन बच्चे तीनों दीक्षित हैं, दो लड़कियां हैं एक लड़का है दीक्षित, उनकी जिससे के साथ शादी हुई है वो सब दीक्षित हैं, उनके बच्चे गोपाल्स गार्डन में हैं, ये सब जो उनका डिवोशनल ट्री, फैमिली ट्री, उसकी शुरुआत कैसे हुई, वो राधेश्याम प्रभु रस्ते में से जा रहे हैं और अचानक इनके घर जाकर कहते हैं कि मैं कुछ यहां पे बोलना चाहूंगा। तो ये मुखरा माता जी मेरे ख्याल से पिछले साल तो लंग कैंसर डिटेक्ट हुआ इनका, और ये कोई बहुत वृद्ध नहीं थी, ये 50s में उनकी उम्र, लंग कैंसर डिटेक्ट हुआ, और वो भी फोर्थ स्टेज, एडवांस स्टेज का लंग कैंसर, और डॉक्टर्स ने बस कुछ महीने की मोहलत दी इनको। तो तुरंत, और वहां पर आप ब्रह्मचारीज को पूछो, जो भी राधा गोपीनाथ से ब्रह्मचारीज वहां पर जाते थे, मैं भी एक बार गया था महाराज के साथ, तो मुखरा माता जी का एक ही उद्देश्य कि सबको भर पेट प्रसाद खिलाना, और वो सब डिटेल्स जानती थी कि कौन से पर्टिकुलर डिवोटी को क्या प्रसाद पसंद है, कितने क्वांटिटी में पसंद है, वो सारा डिटेल्स वो जानते थे, मानो कि वो उनकी उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल सर्विस थी। और जो भी राधा गोपीनाथ से सीनियर ब्रह्मचारी वहां पर जाते थे प्रीचिंग के लिए, वो वहीं पे रुकते थे, और फिर वहां से कांग्रीगेशन बढ़ा, फिर धीरे धीरे ब्रह्मचारी बढ़े। और जब इनको पता चला कि एडवांस स्टेज कैंसर का है, तो ये इतना प्रसन्न हुई, इनके हस्बैंड तो त्रस्त हो गए, फैमिली पूरा ये सुनकर, परंतु ये इतना प्रसन्न हो गई ये मुखरा माता जी, इन्होंने कहा कि बस अब भागवत सप्ताह ऑर्गेनाइज करना है और भागवत सप्ताह में कौन कौन क्या बोलेगा वो सब उन्होंने डिसाइड किया। अपने बेटे को बोला कि सबसे पहले तुम बोलोगे, सखी शरण प्रभु उनके बेटे हैं, तो उनको कहा। फिर वो अपने लास्ट स्टेजेस में, जैसे कि यहां माता जी गार्लैंड्स बनाते हैं तो वैसे वो गार्लैंड्स बनाती थी, तो वो एक विशेष प्रकार का गार्लैंड बनाती थी। तो माता जी पूछते थे कि ये गार्लैंड आप थोड़ा अलग क्यों बना रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मुझे श्रीमती राधा रानी ने डायरेक्शंस दिए गार्लैंड बनाने के, मुझे नहीं पता, मैं अपने से नहीं बना रही हूं, आई हैव बीन डायरेक्टेड टू मेक दीज काइंड ऑफ गार्लैंड्स। ये सब कोई प्राचीन कथाएं नहीं सुना रहा हूं मैं आपको, पिछले साल की हैं ये सब पिछले साल की कथाएं। और मुस्कुराते हुए सारे डिवोटीज कीर्तन कर रहे हैं, उस अवस्था में उन्होंने अपना शरीर छोड़ा। तो देखिए, उन्होंने कभी शिकायत नहीं करी कि अरे मैंने इतना कुछ किया भगवान की भक्ति के लिए और भगवान ने बदले में मुझे क्या दिया, लंग कैंसर। नहीं, कभी उनकी शिकायत नहीं हुई उसके कनेक्शन में। तो ये पांडव कांस्टेंट कैलामिटीज, इसलिए कई बार क्या होता है कि जब एक बार कोई विपत्ति हमारे जीवन में आती है तो हाँ हम सोचते हैं कि ठीक है ये एक बार विपत्ति आई है, इसको हम कैसे, तो जो भी इतना कुछ सुना है दूसरों के जीवन में देखा है तो इससे हम जूझ लेंगे। परंतु एक के बाद एक विपत्ति आते जाए और जितनी विपत्तियां आ रही हैं उसमें हम कॉन्स्टेंटली कमिटेड रहें, दैट इज वेरी डिफिकल्ट, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। यू कैन बी कमिटेड इन वन और टू कैलामिटीज, बट टू बी कॉन्स्टेंटली कमिटेड, दैट इज समथिंग विच इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। एंड दैट वी लर्न फ्रॉम पांडवास, कि उनके पास कितने कारण थे भगवान के प्रति अपना समर्पण छोड़ने के, परंतु उन्होंने छोड़ा नहीं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हरिदास ठाकुर। डिस्ट्रैक्शन जो उनके सामने, हरिदास ठाकुर के सामने डिस्ट्रैक्शन, और किस प्रकार का डिस्ट्रैक्शन, एकांत में वो वैश्या जो आई, और उस समय हरिदास ठाकुर उनको कोई जानता भी नहीं था, वो ऐसा नहीं था कि वो सब लोग उनको जानते थे कि ये बहुत बड़े आचार्य हैं, नामाचार्य हैं, ही वॉज एन अननोन फिगर इन बेनापोल। और ये वैश्या, और इसने इस प्रकार से अपने आप को प्रस्तुत किया रात्रि के समय कि किसी को पता नहीं चलेगा, न बेनापोल में किसी को पता चलेगा, ना मैं किसी को बताऊंगी, नो वन विल कम टू नो। और उनके सामने, और वो युवावस्था में थे हरिदास ठाकुर, तो उनके भजन में उन्होंने उसको किस प्रकार से देखा कि ये मेरे भजन में डिस्ट्रैक्शन है, बस उन्होंने इस प्रकार से देखा उसको। और उन्होंने किस प्रकार से प्रस्तुत किया कि मेरा भजन हो जान दो पहले। अब देखो उन्होंने कैसे ट्रांसेंडेंटली ट्रिक किया उसको कि भजन पूरा ही नहीं किया अपना। अक्सर हमारी स्थिति क्या है, भजन तो होता रहेगा, वो कहां जाने वाला है, भगवान का नाम नित्य है, मैं आत्मा हूं, मैं भी नित्य हूं, भक्ति नित्य है, लेकिन ये नित्य नहीं है। सोचिए ये डिस्ट्रैक्शन, अभी मुझे याद आ रहा है श्रीवास ठाकुर के आंगन में चैतन्य महाप्रभु जो हरिनाम संकीर्तन करते थे रोज रात को, वो प्रसिद्ध कथा है श्रीवास ठाकुर के स्वयं का लड़का प्राण छोड़ रहा है अपने, और वो लोग श्रीवास ठाकुर को आके बताए कि हमारा लड़का वो प्राण छोड़ रहा है, मृत्यु शैया पर है। श्रीवास ठाकुर ने कहा डिस्ट्रैक्ट मत करो, चैतन्य महाप्रभु के कीर्तन में उसको डिस्ट्रैक्शन माना। सोचिए इतनी बड़ी कैलामिटी, इतना बड़ा डिस्ट्रैक्शन अगर हमारे भजन में आए तो हम तो सबसे पहले माला को संदूक में बंद करके पहले हम सोचते हैं कि इसको डील करें, ये इमरजेंसी को डील करें। इसलिए एक बार मेरे ख्याल से भुरीजन प्रभु वो अपने एक होली नेम सेमिनार में कह रहे थे, व्हेन यू आर चैंटिंग योर राउंड्स एंड समटाइम्स यू गिव अप योर चैंटिंग बिकॉज ऑफ सम इमरजेंसी, होता है ना कुछ इमरजेंसी, इमरजेंसी कई बार हमारा इमरजेंसी क्या होता है, फोन बज गया, तुरंत वो फोन को अटेंड करना है, और फोन को अटेंड करने के लिए हम टेंपल हॉल के बाहर जाते हैं, और फिर जैसे ही वो फोन रिसीव करते हैं वहां से आया इस गाने को कॉपी करने के लिए, आप ये दबाइए वो दबाइए ये रिंगटोन कॉपी करने, कोई फालतू फोन था। और फिर हम रियलाइज करते हैं कि इस फालतू कॉल के लिए हमने किसको साइड में रखा, साक्षात जो युग धर्म है उसको साइड में रखा। तो वो भुरीजन प्रभु कह रहे थे समटाइम्स वी सी डिवोटीज बिकॉज ऑफ सम इमरजेंसी दे कीप असाइड देयर माला टू अटेंड टू इमरजेंसी। तो उन्होंने पूछा व्हाट कुड बी द ग्रेटेस्ट इमरजेंसी, इमेजिनेबल ग्रेटेस्ट इमरजेंसी क्या हो सकती, ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकती, मृत्यु उससे बड़ी इमरजेंसी क्या, और मृत्यु के समय क्या काम आएगा आपको, जो कर रहे वही काम आएगा ना। सो व्हाई नॉट कंटिन्यू चैंटिंग हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। सो व्हाई नॉट कंटिन्यू, इफ द ग्रेटेस्ट कलामिटी can be overcome by chanting Hare Krishna, so why give up? हो सकता है कि वो जो फोन कॉल हो मृत्यु का हो, हम माला छोड़ के उसको अटेंड कर रहे हैं और फिर समझ में आ रहे माला हाथ में होती तो कम से कम उद्धार हो जाता था। तो श्रीवास ठाकुर हरिदास ठाकुर ये लोग सब भगवान के ऐसे बड़े पार्षद क्यों बने, उसके लिए कीमत चुकाई है इन्होंने, दे हैव पेड द प्राइस ऑफ देयर कमिटमेंट टुवर्ड्स चैतन्य महाप्रभु, देन दे हैव बिकम द एटर्नल एसोसिएट्स ऑफ चैतन्य महाप्रभु। कि कौन पिता हो सकता है कि उसका पुत्र मृत्यु शैया पर है और वो चैतन्य महाप्रभु के हरिनाम संकीर्तन में बाधा नहीं लाना चाहता। इनफैक्ट श्रीवास ठाकुर अंदर जाके वो स्त्रियों को कहे, उनका बेटा मर चुका था, इमेजिन उसी घर में उनका बेटा मर गया है, नौजवान बेटा मर गया है, वो स्त्रियों को जाके बोल रहे हैं कि तुम ये जो रो रहे हो वॉल्यूम कम, रोने का वॉल्यूम कम, डिस्टर्बेंस हो जाएगा चैतन्य महाप्रभु के कीर्तन में। चैतन्य महाप्रभु को जब पता चला तो वो सोचने लगे श्रीवास ठाकुर व्हाट काइंड ऑफ अ सरेंडर डिवोटी यू आर, आई कांट इमेजिन। अब इससे हम ये सीख नहीं लेते हैं कि अगर घर पे कोई ऐसी इमरजेंसी आ जाए, सबसे पहले तो हम उस लेवल पे नहीं है क्योंकि वैसा हरिनाम भी नहीं चलता रहता अपना तो। सो वी डोंट हैव टू इमिटेट दीज ग्रेट सोल्स, वी हैव टू फॉलो इन देयर फुटस्टेप्स। और फाइनली श्रीमती राधा रानी के साथ उद्धव जी श्रीमती राधा रानी को कहते हैं कि आपके साथ विश्वासघात किया है भगवान कृष्ण ने, बिट्रेयल। अब देखो कितना आसान होता है भक्ति छोड़ना, जिसको हम आराध्य मानते हैं वो विश्वासघात कर दे हमसे, बिट्रे कर दे। भगवान ने प्रॉमिस किया कि वो आ जाएंगे, तुरंत ही आ जाएंगे, और वो कभी नहीं आए, प्रॉमिस कर कभी नहीं आए। श्रीमती राधा रानी अपना पूरा जीवन, कितने 11 साल भगवान वृंदावन में रहे, और इस पृथ्वी पर 125 साल से भी ज्यादा रहे, उसमें से 11 साल केवल वृंदावन में, उसके बाद बाकी के सारे वर्ष 100 से भी ज्यादा वृंदावन के बाहर। और उन्होंने प्रॉमिस क्या किया था कि मैं बस कंस का वध करने के बाद मैं आ रहा हूं। तो हम हमारे अगले सत्र में श्रीमती राधा रानी का जो उद्गार है, उनका जो कमिटमेंट है, उसको विस्तार से हम हमारे अगले सेशन में लेंगे। परंतु संक्षिप्त रूप में हम ये देख रहे हैं इन सब उदाहरणों से कि ये सारे कारण बन सकते हैं हमारे आज के आधुनिक साधना भक्ति में अवरोध बनने का। फेलियर, बैड एसोसिएशन, कंफर्ट, क्रिटिसिज्म, कलामिटी, सेंस प्लेजर एंड बिट्रेल, नोबडी कैन से। इनफैक्ट समटाइम्स एक नहीं, एक ही काफी है हमको तो हमारे भक्ति से, पटरी से बाहर निकालने के लिए एक ही काफी है। एक बार एक जिज्ञासु व्यक्ति, जो कि काफी अध्यात्म का पालन करता था, तो उसने देखा कि एक साधु महात्मा आए हुए हैं उनके प्रांत में, और बड़े काफिले के साथ आए हुए हैं। तो वो उनके पास गए और ये प्रश्न उन्होंने पूछा कि मैं इतने वर्षों से भगवान की भक्ति कर रहा हूं, परंतु मेरे जीवन की जो परेशानियां हैं, कठिनाइयां हैं, वो दूर होना तो कम, वो बढ़ती दिखती है मुझे। फैमिलियर क्वेश्चन, बढ़ती दिखती हैं। तो बहुत सुंदर तरीके से ये साधु महात्मा ने आंसर किया। उन्होंने कहा कि देखो तुम मेरे साथ रहो, 2 दिन मेरे साथ रहो, और मैं 2 दिन में तुम्हें तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर दूंगा। तो उसने कहा ठीक है। तो इन महात्मा ने कहा कि एक सेवा मेरी करनी होगी तुम्हें आज रात को। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए, क्या सेवा आपकी करनी। मेरे साथ इस काफिले में 100 ऊंट हैं, तो ऐसा कीजिए कि ये ऊंट को आप रात को सुलाकर फिर सोइए, परंतु ये देख लेना कि ये सारे के सारे 100 ऊंट ये बैठकर, क्योंकि बैठ के सोते हैं ये ऊंट, बैठ के सोते हैं, तो ये सारे के सारे 100 ऊंट जब तक बैठे ना तब तक आप मत सोना, क्योंकि फिर ये कहीं पर भी जा सकते हैं, तो वो डर है मुझे। परंतु एक बार ये बैठ जाते हैं तो फिर मेरे को तसल्ली रही। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, ये सेवा आपकी हम करेंगे। दूसरे दिन सुबह महात्मा जी ने पूछा तो कैसी बीती रात। ये आपके क्या ऊंट हैं, कभी 2 बैठते हैं तो 4 खड़े हो जाते हैं, उनको जाके मैं बिठाऊं, ये जो पहले बिठाए थे घंटे पहले ये खड़े हो जाते हैं। अरे मैं तो पूरे रात भर यहां से वहां, कभी इसको बिठाऊं वो खड़ा हो जाए, कभी उसको, यही मैं लगा रहा पूरे रात भर। आपने कहा था कि ये बैठ जाएंगे, ये सब सो जाएंगे, ये तो रात भर मेरे को सोने नहीं दिए। तो महात्मा जी ने कहा तुम्हारे प्रश्न का ये उत्तर था कि तुम्हारे भक्ति की जो परेशानियां है ना, वो इन ऊंट के समान है, इनको तुम कभी रात में बिठा नहीं सकोगे एक साथ, कभी कोई ऊंट खड़ा होगा, हाँ कभी 99 बैठ जाएंगे, 99 ऊंट बैठ जाएंगे, एक खड़ा रहेगा, है ना। भक्ति में 99% सब कुछ मैंने संवार कर रखा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फैमिली भी हाँ, बच्चे भी नरसिंह आरती गाते हैं, जो भी पत्नी भी एकदम पतिव्रता है, हाँ सब कुछ सास से बनती है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, और सब कुछ संवार लिया है मैंने। मंदिर में भी आता हूँ तो मेरा एक रुतबा है, सब लोग मेरे को प्रभु दंडवत ये सब कर कर पुकारते हैं, हाँ एक पोजीशन है मेरा मंदिर के अंदर, हाँ बोलबाला है उधर भी, तो सब कुछ ठीक है। एक ऊंट कहीं पे रहता है, वो खड़ा रहता है ना, और सब हम लोग पर्सनली जानते हैं कि वो कौन सा ऊंट है जो बैठ नहीं रहा है रात भर, और हम लगे हुए हैं उसको बिठाने के लिए, और कई बार कुछ महीने बीत जाते हैं खड़ा हुआ है वो ऊंट, फिर उसको बिठाने की कोशिश करते हैं, वो थोड़ा थोड़ा ऐसे झुक रहा है, वो परेशानी थोड़ी सी कम होती जा रही है ऐसे लग रहा है, उसको कैसे तो हम बिठा देते हैं। जैसे वो बैठा हमने नजर घुमाई, वहां पे 10 और खड़े हो गए। दिस इज द नेचर ऑफ मटीरियल प्रॉब्लम्स। यू कैन नेवर हैव ऑल द 100 कैमल्स अंडर योर कंट्रोल। और कई बार क्या होता है, ये एक और शिक्षा है इसमें, हम अपना पूरा अथक प्रयास लगाते हैं वो चार ऊंट, जो भी चार ऊंट खड़े हुए हैं उनको बिठाने का, और हमारे प्रयासों से उनको अलग अलग प्रकार से पुचकार कर दुलार कर उनको बैठ, बैठ बैठो बैठो हा? अच्छा है, बैठना अच्छा रहता है, तुम बहुत खड़े रहते हो, इतना चलना है, इतना सेहत के लिए अच्छा, बैठो, उनको पुचकार कर उनको हम बिठा देते हैं, और वो भी मान जाते हैं, वो भी बैठ जाते हैं, तो परेशानियों को कम हम कई बार हम अपने प्रयासों से कंट्रोल में लाते हैं, और कुछ घंटों बाद वही ऊंट जो हमारे प्रयासों से बैठे थे वो खड़े हो जाते हैं। सो द सेम प्रॉब्लम्स वी हैव एक्सपीरियंस्ड विच वी वर एबल टू कंट्रोल फ्यू ईयर्स अगो, दे अगेन शो अप, दे अगेन शो देयर फेस। वो लोग खड़े होके, ऊंट कैसे वो चरता रहता ना, खड़े होके देखता रहता, अब क्या करेगा, खड़ा हो गया, वैसे वो प्रॉब्लम्स ऐसे खड़े होके फिर हमको देखते रहते, करो अभी क्या करोगे, फिर से हम अपना प्रयास लगाते। ये तो वो साधु महात्मा ने कहा कि मैं जानबूझकर मैंने उत्तर कहा नहीं, मैं तुम्हें दिखाना चाहता था उत्तर के रूप में, कि तुम आए थे इस अपेक्षा में कि मेरे भक्ति की परेशानियां एक साथ कब सारी खत्म हो जाएंगी, कभी नहीं होंगी जैसे कि ये ऊंट। इसलिए ये जो लिस्ट हम देख रहे हैं, हम लोग एकदम लिस्ट निकाल लेते हैं, हाँ तो मेरे इसमें क्या प्रॉब्लम है, सेकंड वाला, थर्ड वाला, कौन सा वाला प्रॉब्लम है, बस हो गया, लिस्ट निकाल दिया मैंने, ये सब ऊंट की तरह है। कई बार हमको 100 ऊंट की जरूरत नहीं है, एक ही ऊंट दे देते हैं भगवान, ले इसको झेल तू वो एक ही ऊंट काफी है, जिंदगी भर वो एक ऊंट को बिठाने की कोशिश करते हैं, तू बैठ जाए, एक ही है, एक ही है, वो एक ऊंट को बिठाने में जिंदगी बीत जाती है, कभी बैठता है, कभी खड़ा होता है, कभी भागने लगता है, हाँ? और भगाता है हमको। इसलिए भगवान को जब हम शरणागत होते हैं तो भगवान जो हैं उनका एक नाम है पशुपाल, बहुत सुंदर एक नाम है भगवान का, कि जो पशुओं के पालक हैं, और हम भी पशु से कोई कम नहीं है, हमको ये नहीं समझना चाहिए कि पशु अलग हैं मैं अलग हूं, नहीं, हम भी एक पशु है, प्राणी है हम लोग भी। तो इसलिए जब हम इन सारे एक्सट्रीम एग्जाम्पल्स जो हमने अभी देखे समर्पण के, जिनके पास वैलिड रीजंस थे सरेंडर को गिव अप करने के या कमिटमेंट को छोड़ने के वैलिड रीजंस थे, परंतु उन सब रीजंस को उन्होंने पार करते हुए अपने समर्पण को दिखाया। सो लेट अस फॉलो इन देयर फुटस्टेप्स एंड ट्राई टू बिकम कमिटेड सरेंडर्ड डिवोटीज ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। हरे कृष्णा 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 हरे, हरे राम राम राम। किसी का कोई प्रश्न? एनी कॉमेंट्स क्वेश्चंस?
Roji, thank you for such a beautiful class. Actually, एक प्रश्न भी है और एक एक पॉइंट भी है। प्रश्न मेरा ऐसा है कि कई बार जो नेगेटिव साइड पे जो प्रॉब्लम्स हैं, जैसे फेलियर है, बैड एसोसिएशन है, क्रिटिसिज्म है, कलामिटीज है, बिट्रेल है, इसमें सरेंडर करना कंपैरेटिवली इजीयर होता है। तो कई सारी चीज़ों से जूझते हुए वी नो व्हाट काइंड ऑफ लाइफ वी आर लिविंग इन मटेरियल वर्ल्ड। तो हम लोग कुछ चीज़ें अपनी कंफर्ट की या फिर थोड़ा सा लेजिटिमेट सेंस ग्रेटिफिकेशन व्हाट वी हैव इवन विथ ऑल ऑफ द विद इन द यू नो रूल्स एंड रेगुलेशंस, तो कभी कभी हम उसको बहुत संभाल के रखते हैं कि नहीं इतना करते हैं ना तो इतना अपना राइट है, या ऐसा मन अपने साथ खेलता है। सो हाउ टू डील विद दैट वन। एंड सेकेंड थिंग व्हाट आई वांटेड टू आस्क, यू नो व्हाट इफ वी शिफ्ट आवर फोकस फ्रॉम ऑल ऑफ दीज थिंग्स मोर टुवर्ड्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज, डज इट हेल्प टू सरेंडर बेटर than focusing on that these all things are coming in our life?
See, first of all, when you are talking of legitimate gratification, which means it is according to scriptures, like Srila Prabhupada, you know, he introduced the practical aspect of Krishna consciousness within ISKCON in such a way that looking at the condition of not just the present at that time when he was preaching, but also the future sadhakas. So it appeared that as if Prabhupada compromised when he allowed ladies to live in the temple as brahmacharini, where there is no ashram like that, brahmacharini ashram kuch nahi hai, but Prabhupada allowed that, and so many things, you know, Prabhupada allowed western music to be played, Prabhupada allowed, you know, whatever they could cook for Krishna, you know, they could offer it to Krishna. So he allowed that, but he simultaneously he gave us the principle of, you know, doing it for the pleasure of Krishna. So if that is lost, where there is legitimate pleasure, but for whom? Like Prabhupada said, the goal of human form of life is sense gratification. And then when this disciple became very happy to hear that, Prabhupada said, not yours. Pause diya Prabhupada. Krishna's. So yes, you know, there is that pastime, the 10th anniversary of the formation of ISKCON. So big cake was brought, which was offered to the deities and brought in front of Srila Prabhupada. So then one disciple, he told Srila Prabhupada that, Prabhupada, isn't this wonderful that, you know, this was offered to Krishna and Krishna as it is gave it to us to enjoy. So we are also enjoying as much as Krishna just enjoyed this cake. Prabhupada said, no. We devotees of Krishna, we enjoy more than Krishna. Again, we have to understand the principle behind that. The intention is more important. That whatever legitimate pleasure, if it is, uska jo Hindi mein kehte na, agar uska hum galat fayda uthaein, jo licensed pleasure diya gaya hai, uska agar hum galat fayda uthaein, to anything, jaise Prabhupada ne kaha, even if you are materially attached to a gulab jamun, you have to come back. For that gulab jamun, you have to come back. So again, the motivations are the most important. That's what we have to work upon. Other things will come and go. Hota na, kai baar jab hum bhakti mein aate hain, to aise aise cheeje humko lagta hai ki iske bina bhakti hogi nahi. Jaise Prabhupada jab initial days mein Prabhupada itna khilate the, wo hippies jab aate the, unko itna khilate the. Aur phir वो लोग जब इतना प्रसाद खाने के बाद फिर धीरे धीरे उनको लगा कि हाँ बस यही भक्ति का गोल है. फिर प्रभुपाद ने कहा ना नाउ रेगुलेट, इतना नहीं खाना चाहिए. तब उनको समझ में आया कि भक्ति के लेवल्स हैं जिसके अंदर एक पर्टिकुलर लेवल पर हाँ कुछ छूट दी जाएगी. आश्रम की छूट होती है, जैसे कि गृहस्थ आश्रम में हाँ कुछ कॉम्प्रोमाइजेज हैं या फ्लेक्सिबिलिटी बोलेंगे या छूट है, लाइसेंस है. और ब्रह्मचर्य आश्रम में कुछ अलग है. जैसे कि ब्रह्मचर्य आश्रम में नौकरी नहीं है उनकी, उनका कोई ना पर्सनल बैंक अकाउंट नहीं है, ये सब कुछ नहीं है. तो अगर गृहस्थ बोले कि मेरे को भी ये फैसिलिटी होनी चाहिए ना, नौकरी नहीं, उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग हैं. ब्रह्मचारी की रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग है, सन्यासी की रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी इंटेंस है. तो आश्रम के अनुसार उसका लेजिटिमेट जो भी लाइसेंस्ड फैसिलिटीज हैं या प्लेजर्स हैं या जो आप बोल रहे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं. अब देखिए कि दूसरा क्वेश्चन आपका जो था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी के वजह से सरेंडर अच्छा होता है. डेफिनेटली कि वट एवर वर्क्स, अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी के द्वारा हमारा सरेंडर पक्का हो रहा है तो हाँ. जैसे कि राधानाथ महाराज हमको एक ब्रह्मचारी क्लास में बोल रहे थे कि जब तक हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, चाहे छोटी से छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, लेकिन हाँ ये भावना में कि भगवान के भगवान की ओर से ये मुझे दिया गया है, ये मैं जिम्मेदार हूं, तब तक आप ये महसूस नहीं करोगे कि आपने कुछ कंट्रीब्यूट किया. यू वोंट फील दैट सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट अंटिल एंड अनलेस यू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो वेदर अ ब्रह्मचारी इज टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्प्रेडिंग द मिशन or whether a grahastha is taking the responsibility of that kind of deliverance. Dono delivery hoti na, delivering the souls and delivering babies at home. Dono English mein dono ko delivery bolte. Like Daksha Prajapati and Narad Muni. So Daksha Prajapati was delivering 10,000 kids and Narad Muni was delivering them from material world. So one was sannyasi, one was grahastha, both were delivering. So responsibility, both were fulfilling their responsibility. So yes, why not? one has to become responsible in whatever one does. जैसे हरिदास ठाकुर, उन्होंने उस वैश्या को क्या कहा, भाई मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरा ये जो प्रिस्क्राइब्ड राउंड्स है ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सो प्लीज यू हैव टू बेयर विथ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो ही पोर्ट्रेड, ऑफकोर्स ही वॉज ऑन सच अ हाई पेडेस्टल ऑफ लविंग कृष्णा, बट एक्सटर्नली ही शोड दैट यू नो इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फिनिश माई राउंड्स, प्लीज वेट बेयर अंटिल आई fulfill my responsibility. So he showed that yes, that responsibility helped him to always take shelter of the holy name. That okay? Hari bol. Jai Granth Raj Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai.
His Grace Shikshashram Prabhu ki jai. Hare Krishna. Kuch mahatvapurna suchna is prakar se kripya.